कुछ देर बाद भी जब आरवी ने उस पर से अपनी निगाहें नहीं हटाईं तो शान ने जलती निगाहों से उसे घूर कर देखा, जिसके बाद उसने तुरंत ही अपनी निगाहें शान पर से हटा लीं और उन दोनों की तरफ बढ़ गई। अंशु शान से लिपटी हुई थी, तभी आरवी की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अंशु बेटा, चलो मम्मा आपको नहलाकर तैयार कर दें, उसके बाद आपको स्कूल भी जाना है। अंशु ने उसकी बात सुनी तो शान की गर्दन में अपनी छोटी छोटी बाहों को फंसाते हुए उससे लिपट गई और उसके सीने से हल्का सा सर बाहर निकालते हुए क्यूट सी शक्ल बनाकर बोली, नो मम्मा, आज बेबी डैडी के साथ टाइम स्पेंड करेगी, बेबी डैडी से दूर नहीं जाएगी, वरना डैडी फिर से बेबी को अलोन छोड़कर चले जाएंगे। उसकी बातों में शान के जाने का डर साफ छलक रहा था। इस बार पूरे एक महीने वो शान से दूर रही थी, इसीलिए अब उससे दूर नहीं जाना चाहती थी। अंशु की मासूमियत भरी बात सुनकर आरवी खामोश रह गई। वो कुछ कह ही ना सकी, पर निगाहें जरूर शान की तरफ घूम गई थीं। पर शान ने उसे देखा तक नहीं, उसने आरवी की मौजूदगी को पूरे तरह से नज़रअंदाज कर दिया था, पर अंशु की बातों को अनसुना ना कर सका। हर बार की तरह इस बार भी आरवी को तकलीफ देने के चक्कर में उसने अपनी बेटी के मासूम से दिल को ठेस पहुंचा दी थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर अंशु को अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल बाद उसने उसे खुद से अलग किया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, बेटा डैडी आपको छोड़कर अब कभी कहीं नहीं जाएंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। अभी आप तैयार हो जाइए, आज डैडी ही आपको स्कूल छोड़ने चलेंगे और अपने साथ ही आपको घर भी लेकर आएंगे। उसके बाद सारा दिन डैडी आपके साथ खूब मस्ती करेंगे, अपने बेटों की सब बातें भी सुनेंगे, पर उसके लिए अभी आपको स्कूल जाना होगा। अगर आपने डैडी की बात मानी और गुड गर्ल बनकर स्कूल गईं तो डैडी आपके लिए जो गिफ्ट लाए हैं वो भी आपके स्कूल से आने के बाद आपको दिखाएंगे, और अगर आप स्कूल नहीं गईं तो डैडी वापस आपको छोड़कर चले जाएंगे। नन्ही अंशु बड़े ध्यान से उसकी बात सुन रही थी, छोटी थी पर उसकी हर बात समझ रही थी वो। शान ने जैसे ही वापस जाने की बात कही, अंशु ने उसको कस के पकड़ लिया और उसके सीने में अपना सर छुपाते हुए बोली, नो डैडी, बेबी स्कूल जाएगी, पर आप बेबी को छोड़कर नहीं जाएंगे, बेबी को आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो रुआंसी हो उठी। उसकी बात सुनकर शान को उसकी मासूमियत पर प्यार आने लगा, साथ ही एहसास भी हुआ कि उसने उसको अनजाने में कितनी तकलीफ पहुंचाई है। उसने प्यार से उसके सर को चूम लिया, फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। डैडी बेबी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चलिए अब जल्दी से उठिए, आज डैडी खुद अपनी प्रिंसेस को स्कूल के लिए रेडी करेंगे। सच्ची डैडी? अंशु आंखों में चमक लिए उसे देखने लगी। उसका खिला हुआ चेहरा और चमकती आंखें देखकर शान ने हामी भरते हुए प्यार से उसके माथे को चूम लिया, फिर उसको अपनी गोद में उठाकर बेड से नीचे उतर गया। आरवी के साइड से गुजरते हुए उसने उड़ती नज़र उसके हाथ पर डाली, उंगलियां अब भी लाल थीं। ये देखकर उसकी आंखों में दर्द उतर आया, पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और उसको नज़रअंदाज करते हुए अंशु को अपनी बाहों में उठाए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। आरवी खामोश सी दोनों को जाते हुए देखती रही, अपने उल्टे हाथ से अंशु की ड्रेस और बाकी चीज़ें निकालकर बेड पर रखने लगी। कुछ देर बाद शान अंशु को टॉवल में लपेटकर अपनी बाहों में उठाए रूम में दाखिल हुआ और सीधे ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। उसने अंशु को ड्रेसिंग टेबल के सामने वाले टेबल पर खड़ा किया तो आरवी उसके कपड़े लेकर उसके पास चली आई। शान ने बड़ी ही बेरुखी से उसके हाथ से कपड़े छीन लिए। आरवी खामोश ही रही और शांति से खड़ी हो गई। अंशु ने शान से अपनी निक्कर ले ली और उसको अपनी आंखें बंद करने को कह दिया, जिस पर शान के लबों पर मुस्कान ठहर गई। उसकी छोटी सी बेटी इतनी समझदार हो चुकी थी कि बाथरूम में भी उसने शान के सामने अपने निक्कर को नहीं उतारा था। जब शान ने उसे टॉवल में लपेट दिया उसके बाद उसने उसे उतारा और अब भी वो उसके सामने निक्कर नहीं पहन रही थी। शान मुस्कुराकर आंखें बंद करते हुए दूसरे तरफ घूम गया। आरवी ने अब उसके पास आकर उसकी मदद की, फिर जब उसने निक्कर पहन ली तो उसके ऊपर से टॉवल हटाकर उसके भीगे शरीर को उससे पोंछने लगी, पर अचानक ही उसके हाथ से टॉवल छीन लिया गया। आरवी का मुंह छोटा सा हो गया, वो सर झुकाकर साइड में खड़ी हो गई। शान ने एक नज़र उसके हाथ को देखा, फिर खुद ही अंशु को टॉवल से पोंछने के बाद उसे कपड़े पहनाने लगा। कपड़ों के बाद बारी आई बाल बनाने की, जिसमें शान को काफ़ी मुश्किल हुई। किसी तरह उसने उनके घुंघराले बालों को दो पोनी टेल में बांधा, फिर फेस पर क्रीम लगाने के बाद उसके जुराबें पहनाई। कुछ ही देर में अंशु स्कूल के लिए तैयार हो चुकी थी। आरवी की तरफ सर घुमाकर मुस्कुराकर बोली, मम्मा सी, डैडी ने अंशु को कितने अच्छे से रेडी कर दिया। उसकी उत्सुकता देखकर आरवी ने हौले से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। शान ने प्यार से अंशु के गाल को चूम लिया तो अंशु ने भी उसके गाल पर किस कर दिया, फिर आरवी को देखकर मुस्कुराकर बोली, मम्मा कम हियर। आरवी ने उसके सामने अपना चेहरा किया तो अंशु ने उसके भी गाल पर किस कर दिया और मुस्कुरा उठी। आरवी ने एक नज़र शान को देखा, फिर अंशु को लेकर रूम से बाहर चली गई। शान भी अब नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो नहाकर रेडी होकर नीचे पहुंचा तो हॉल में ही बाकी सब बैठे थे। शान ने सबको मॉर्निंग विश किया, फिर किसी को कुछ पूछने का मौका ना देते हुए अंशु को अपनी गोद में उठाकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया।
आरवी तो वहां थी ही नहीं और अर्पिता जी चाहकर भी उससे कुछ कह ना सकी। सुयश जी और सुभाष जी दोनों की परेशान निगाहें एक दूसरे की तरफ घूम गईं। शान का व्यवहार दोनों को ही अजीब लगा, पर वो कुछ कह ही ना सके। धीरे धीरे सभी डाइनिंग एरिया में पहुंच गए। शान ने खुद को पूरी तरह से अंशु के साथ बिजी रखा, शायद वो सबके सवालों से बचने के लिए ही ऐसा कर रहा था। बाकी सब खामोश से खाना खा रहे थे। आरवी छाया के साथ साइड में खड़ी थी, उसके हाथ से वो खाना खा नहीं पाती और बाकी सब ये देखकर परेशान हो जाते, इसीलिए उसने भूख ना होने का बहाना बना दिया। शान महीने बाद घर लौटा था। घर का खाना खाए हुए महीना बीत चुका था, या ये कहें कि आरवी के हाथों के खाने को वो पिछले एक महीने से मिस कर रहा था। आज जब खाने बैठा तो अलग ही सुकून झलक रहा था उसके चेहरे पर, लेकिन जैसे ही उसने अंशु को भरपेट खाना खिलाने के बाद पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसका वो सुकून पल में गायब हो गया। पहले तो उसने गुस्से में आरवी की तरफ निगाहें घुमाई, पर कुछ बोलने से पहले ही उसका ध्यान उसके हाथ पर चला गया और वो खामोश रह गया। आरवी समझ रही थी कि गुस्से में वो उस पर चिल्लाने वाला है और इसीलिए थोड़ा घबरा भी गई थी कि अब तक तो उनके बीच जो भी था उनके बीच था, सिर्फ अर्पिता जी ही सब जानती थी। पर अगर अभी शान ने कुछ कहा तो सबको उनके बिगड़ते रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि अंशु भी वहीं थी। उसके सामने शान का गुस्सा करना उसके मासूम से दिल पर बुरा असर डाल सकता था, इसीलिए वो कुछ घबरा गई थी। पर जब शान ने बिना कुछ कहे ही उस पर से अपनी निगाहें हटा ली तो वो तो हैरानी से उसे देखने लगी। पर अगले ही पल चौंक गई जब शान ने अपनी प्लेट आगे सरका दी और चेयर पर से उठकर खड़ा हो गया। आरवी उससे कुछ कहती उससे पहले ही सुभाष जी, जो तब से गहराई से शान के भावों को देख रहे थे, उन्होंने हैरानी से पूछा, शान बेटा अभी तक तो आपने कुछ खाया ही नहीं, फिर खाना छोड़कर उठ क्यों गए? शान ने निगाहें उनकी तरफ घुमाई और शांत भाव से बोला, मन नहीं है डैड, आप खाइए, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। आप आज महीने भर बाद घर लौटे हैं और अब ऑफिस जाना चाहते हैं, एक दिन भी अपने परिवार के साथ नहीं बिताएंगे आप, आराम नहीं करेंगे?
ये सुयश जी थे जो उसके ऑफिस जाने की बात सुनकर चौंक भी गए थे और कुछ परेशान भी हो गए थे। शान ने उनका सवाल सुना तो अब उसकी तरफ निगाहें घुमाते हुए बोला, बड़े पापा एक महीना हो गया ऑफिस गए हुए, तो जरा देख लूँ कि सब ठीक है या नहीं, फिर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी है, उसके बाद मैं वापस घर आ जाऊँगा, बस आधे दिन की बात है, उसके बाद तो मैं यहीं रहूँगा आप सबके साथ और आराम ही करूँगा, शान ने जवाब दिया और अंशु को अपनी गोद में उठाते हुए मुस्कुराकर बोला, चलिए अब डैडी आपका बैग पैक कर देते हैं, उसके बाद डैडी आपको स्कूल छोड़ने चलेंगे। एक तरफ जहाँ सब परेशान थे, वहीं अंशु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर महीने भर बाद उसे अपने डैडी का इतना वक्त मिल रहा था, इसलिए वो बहुत खुश थी। शान अंशु को अपनी गोद में उठाकर उससे बात करते हुए वहां से चला गया। बाकी सब परेशान से एक दूसरे को देखने लगे। आरवी भी अभी जो भी हुआ उन सबको मिलाकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर शान का यूं बिना खाना खाए उठने की वजह क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में अचानक ही कोई बात कौन थी और उसकी निगाहें उस दिशा में घूम गईं जहां अभी अभी शान गया था। वो कुछ पल जाते हुए शान को हैरानी से देखती रही, फिर अचानक ही उसके उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने सबको देखकर कहा, आप सब खाना खाइए, मैं उन्हें ब्रेकफास्ट करवा दूंगी, उनकी चिंता मत कीजिए आप। इतना कहकर वो तुरंत ही किचन की तरफ बढ़ गई। छाया भी उसके पीछे पीछे चली गई। सब कुछ पल हैरान परेशान से जाती हुई आरवी को देखते रहे। फिर अर्पिता जी के कहने पर सबने खाना खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद शान अंशु को अपनी गोद में उठाए और दूसरे हाथ में उसका बैग पकड़े हॉल में पहुंचा, और जैसे ही गेट की तरफ बढ़ा किचन से दौड़ते हुए छाया बाहर आई और उसे रोकते हुए बोली, भैया रुक जाइए। शान के आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसने पलटकर देखा तो छाया एक हाथ में एक प्लेट तो दूसरे में अंशु का लंच बॉक्स और वाटर बॉटल पकड़े उसकी तरफ ही दौड़े चली आ रही थी। दूर से ही शान को कुछ जानी पहचानी सी महकाने और जिज्ञासावश पोस प्लेट में क्या है ये देखने की कोशिश करने लगा। कुछ ही सेकंड बाद छाया ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई और प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, भैया भूखे पेट घर से बाहर नहीं जाते, आप तब तक इन्हें खत्म कीजिए, मैं इतने में अंशु बेबी का लंच रख देती हूँ। शान ने अब प्लेट पर निगाहें डाली तो उसमें रखे पनीर के चीलों को देखकर और उनकी खुशबू से ही वो समझ गया कि ये आरवी ने उसके लिए बनाकर भेजा है, और जो शब्द छाया ने कहे वो भी आरवी के ही हैं। टू बी कंटिन्यूड। क्या करेगा अब शान, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी।